नमस्कार। हमारी आज की कहानी भारत की उन अनसुनी कहानियों में से है जो घटती तो हैं मगर उनके बारे में मुख्य धारा की मीडिया में अक्सर बात नहीं होती। ये कहानी है श्रीकांत की। श्रीकांत वो क्रिकेट वाले श्रीकांत नहीं, ये श्रीकांत बोला है जो थोड़े अज्ञात हैं। इनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो खेत मजदूरी और ऐसे ही छोटे मोटे रोजगार से गुजारा करता था। ये ग्रामीण परिवार साल के 20,000 रुपये से भी कम में गुजारा कर रहा होता था, यानी कि एक महीने का 2,000 रुपये भी नहीं। ये बालक श्रीकांत जन्म से ही नेत्रहीन थे। कुछ पड़ोसियों ने उनके माँ बाप को सलाह दी कि गरीब का अंधा बच्चा आखिर जीकर करेगा भी क्या। नमक की डली चटाने, तकिया रख देने, ऐसी सलाह भी आई, लेकिन श्रीकांत के माँ बाप ने ऐसी मूर्खतापूर्ण सलाहों पर कोई ध्यान नहीं दिया। बच्चा जब बड़ा होने लगा तो उसे पास के ही एक स्कूल में डाल दिया गया। अब नेत्रहीन बच्चा क्या करेगा, कक्षा में वो कुछ देख नहीं पाता, ना कोई उससे बात कर रहा होता, कक्षा में उसे कुछ खास समझ में भी नहीं आ रहा होता, तो वो सबसे आखिर कहीं कोने में दुबका बैठा होता था। कुछ दिन बाद उनके पिता को पता चला कि हैदराबाद में एक नेत्रहीनों का स्कूल है। उन्होंने श्रीकांत को वहां डाल दिया। जैसे ही श्रीकांत को मौका मिला और पढ़ाई के सही तरीके से उन्हें पढ़ाया जाने लगा, तो न तो सिर्फ वो पढ़ाई में अव्वल आने लगे बल्कि पता चला कि वो क्रिकेट और शतरंज के अच्छे खिलाड़ी भी हैं। ये वो दौर था जब भारत के पूर्व राष्ट्रपति महर्षि APJ अब्दुल कलाम लीड इंडिया प्रोजेक्ट लेकर आए थे। श्रीकांत को उसमें महर्षि कलाम के साथ काम करने का मौका भी मिला। 10वीं में श्रीकांत के जब अंक आए तो पता चला कि उन्हें 90% से ऊपर नंबर आए हैं। मगर अब समस्या ये थी कि भारत में नेत्रहीनों को विज्ञान विषय चुनने की इजाज़त ही नहीं थी। श्रीकांत अदालत जा पहुंचे और मुकदमा ठोक दिया। काफ़ी खींचतान के बाद उन्हें खुद की जिम्मेदारी पर विज्ञान विषय चुनने की इजाजत मिली। अजीब ही बात है, बिहार वगैरह में देखें तो लाखों बच्चों के फेल होने पर किसी सरकार या किसी शिक्षक किसी व्यवस्था को जवाबदेह तो ठहराया नहीं जाता। अब खुद की जिम्मेदारी का मतलब क्या होता है या अपनी जिम्मेदारी पर श्रीकांत को विज्ञान विषय पढ़ने देने का मतलब क्या निकाला जाए, ये मुझे नहीं पता। हाँ, ये मुझे पता है कि 12वीं में श्रीकांत को 98% यानी 98% से ऊपर नंबर आए थे। उस दौर में IIT और BITS जैसे संस्थानों में नेत्रहीनों को अपनी प्रवेश परीक्षा देने की इजाज़त नहीं देते थे। मजबूरन श्रीकांत पहले ऐसे अंतर्राष्ट्रीय नेत्रहीन छात्र बने जो MIT गए। अमेरिका की विश्वविख्यात MIT स्लोन का नाम शायद आपने सुना हो, वो वहीं चले गए। वहाँ से पढ़ाई करने के बाद किस किस्म की नौकरियाँ मिलती हैं इसका अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है, लेकिन श्रीकांत वहाँ रुके नहीं। पढ़ाई पूरी करने के बाद श्रीकांत अमेरिका से वापस भारत में काम करने आ गए। उन्होंने उत्पादों की इको फ्रेंडली पैकेजिंग के लिए काम करना शुरू किया। फिलहाल उनके पास 4 प्रोडक्शन प्लांट हैं और एक पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित प्लांट आंध्र प्रदेश में बन रहा है। उनके पास काम करने वाले लोगों में से करीब करीब 70% लोग किसी न किसी रूप में दिव्यांग हैं और उनका सेल्स टर्नओवर 500 करोड़ रुपये का है। उनसे पूछे जाने पर वो अपनी कामयाबी के बारे में कहते हैं कि जब दुनिया उनसे कहती कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो उनका जवाब होता था, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। अब जब आप यहाँ तक आ गए हैं तो बता दें कि इस बार हमने एक प्रेरक प्रसंग के बहाने से आपको भगवद गीता का सिर्फ एक श्लोक पढ़ा डाला है। भगवद गीता के 18वें अध्याय का 14वां श्लोक कहता है कि 5 हेतु यानी उपयुक्त देश, उद्यमशील कर्ता, समस्त इंद्रियों का प्रयोग, बार बार चेष्टा और दैव, जब ये एक साथ मिलते हैं तो कार्य में सफलता मिलती है। ये भगवद गीता के 18वें अध्याय का 14वां श्लोक है जिसमें कहा गया है, अधिष्ठानं तथा कर्ता कर्णं च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम। ध्यान रहे, भगवद गीता में 700 श्लोक ही होते हैं। उसमें ना तो फालतू के शब्द हैं, ना काफिया मिलाने के लिए कोई अक्षर मात्राएं जोड़ी गई हैं। इस वाक्य में भी समस्त इंद्रियां लिखा हुआ है, 5 ज्ञानेंद्रियां या 5 कर्मेंद्रियां नहीं लिखा हुआ। अगर यहाँ कहा गया होता कि 5 कर्मेंद्रियां चाहिए या 5 ज्ञानेंद्रियां चाहिए तो फिर हम ये कहानी श्रीकांत बोला पर लागू नहीं कर पाते। उनके पास एक इंद्री कम थी, लेकिन सिर्फ इतने से अंतर से ये वाक्य सभी लोगों पर लागू हो सके ऐसा प्रबंध कर दिया गया है। आप इसे लेखक की महानता कहें या फिर ये कहें कि सीधा सीधा भगवान उवाच होने के कारण भगवद गीता की ये खासियत है कि आप इसके क्षेत्र से बाहर नहीं होते। उपयुक्त देश लिखा हुआ है, जन्मभूमि या विदेश जैसे अंतर भी नहीं किए गए। क्रम देखेंगे तो आपके हिस्से के किए जाने वाले चारों काम, यानी कि उद्यमशीलकर्ता, सभी इंद्रियों का प्रयोग, बार बार चेष्टा, ये सब जो कि आपके हाथ में होता है, ये सभी पहले आते हैं और बाद में दैव यानी भाग्य आता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवद गीता का ये मानना होता है कि आपके कर्म फल ही आपका भाग्य है। बना बनाया कोई कर्म फल आपको मिलेगा, ऐसी उम्मीद करना बेवकूफी होती है। अब यहाँ यह बताते चलें कि खुद से पढ़ने की कोशिश में अगर दिक्कत होती हो तो भगवद गीता को पढ़ने का एक आसान सा तरीका यह है कि उसे अपने आसपास किसी सामने की जगह पर रख लीजिए और साथ में एक पेंसिल रख दीजिए। आते जाते जब भी आपकी नज़र उस पर पड़े, आप उसमें से एक दो श्लोक उठाकर पढ़ लीजिए। क्रम क्या था, कहाँ से पढ़ा था, इसका ध्यान रखना भी कोई ज़रूरी नहीं है। जो श्लोक आपने पढ़ लिए उन्हें पेंसिल से मार्क कर दीजिए। थोड़े ही दिन में आपको पता चलेगा कि आपने पूरी किताब खत्म कर डाली है। कोई गुरु अगर सिखा रहे होते हैं तो वो एक बार में एक दो श्लोक ही सिखा कर छोड़ते हैं, ढेर सारा एक ही बार में नहीं परोसा जाता। धीरे धीरे शब्दों का पक्का अर्थ, उनके क्रम, पहला कौन आया, बाद में कौन आया, व्याकरण या अन्वय जैसी चीज़ें जिसमें ये बताया जाता है कि कौन कौन से श्लोक एक साथ पढ़े जाते हैं तभी पूरा पूरा अर्थ निकलता है। जैसे उदाहरण के लिए 18वें अध्याय का सिर्फ 14वां श्लोक पढ़कर छोड़ दिया जाए, या फिर 18वें अध्याय के 14वें श्लोक के साथ आपको दो तीन श्लोक और पढ़ने पड़ेंगे, ये अन्वय होता है। भगवद गीता में ज़्यादातर अनुष्टुप छंद का प्रयोग है। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है या नहीं है ये भी आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। बाकी ये जो बताया ये सिर्फ नर्सरी लेवल का है और पीएचडी के लिए आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, ये तो याद रखना पड़ेगा। धन्यवाद।